विक्रांत वहां से सीधा अपनी गोदाम में गया। रात गहरी हो चुकी थी मगर गोदाम के अंदर पीली लाइटें जल रही थीं। भारी लोहे का दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया जैसे कट गई। जीवन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो लगातार कमरे में टहल रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था। जैसे ही विक्रांत अंदर आया, जीवन ठिठक गया। क्या हुआ? विक्रांत ने कोट उतारते हुए कहा। ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया, बिल्कुल आराम से, जैसे कोई तूफान उसके लिए रोज की बात हो। जीवन ने एक पल चुप रहकर कहा, मुझे ऐसा लगता है आर्यन सारी सच्चाई जान चुका है। विक्रांत की भौं जरा सी उठी। कैसी सच्चाई? जीवन ने आवाज धीमी कर ली। जगत का एक्सीडेंट हम लोगों ने नहीं करवाया था। ये सुनकर विक्रांत हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो कुर्सी की पीठ से टिक गया और बोला, ये तो वो बहुत पहले से जानता है। जीवन हैरान होकर बोला, तो फिर वो बार बार वही बात क्यों दोहराता रहता है? क्योंकि उसे लगता है, विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, कि सच बोलने से ताकत मिलती है। मगर सच बोलना आसान है जीवन, सच छुपाना कला है। जीवन बेचैन हो उठा, मगर उसका अंदाज बदल गया है। वो अब सिर्फ सवाल नहीं करता, वो जवाब ढूंढ रहा है। विक्रांत ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं। ढूंढने दो, जो आदमी ज्यादा खोदता है वो अक्सर खुद ही उसमें गिर जाता है। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर जीवन बोला, और वो नया आदमी जमाल जो हमारे ग्रुप में शामिल हुआ है? विक्रांत ने तुरंत नजर उठाई। हाँ, जमाल। आपको सच में लगता है कि वो भरोसेमंद है? जीवन ने सीधा सवाल किया। विक्रांत हल्का सा हंसा। अच्छा आदमी है, हमारे टेस्ट में पूरा उतरा है। वो आगे झुका, आवाज में गंभीरता आ गई। हमें काम के लिए विश्वासपात्र आदमी चाहिए, रिश्तों के लिए नहीं, और जमाल को ये बात अच्छी तरह समझा दी गई है। जीवन ने धीरे से कहा, अगर उसने कभी दिमाग लगाया तो वो भी वही करेगा जो उसे करने दिया जाएगा। विक्रांत ने बात काट दी। याद रखो जीवन, इस खेल में चाले लोग नहीं चलते, हालात चलते हैं, और हालात हमारे हाथ में हैं। वो खड़ा हुआ, गोदाम की खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था मगर विक्रांत की आंखों में साफ तस्वीर थी। आर्यन को लगे कि वो सच्चाई के करीब है। वो बोला, असल में वो उतना ही दूर रहेगा। जीवन ने धीरे से सिर हिलाया मगर उसके चेहरे से डर अब भी नहीं गया था। विक्रांत ने पलटकर आखिरी बात कही, जब तक वो सवाल पूछता रहेगा हम सुरक्षित हैं। जिस दिन उसने चुप रहना सीख लिया उस दिन सावधान हो जाना। गोदाम में फिर सन्नाटा छा गया। कल से मैं जमाल को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीवन ने कहा, मगर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। विक्रांत ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र जीवन के चेहरे पर टिकी रही, वो नज़र जो झूठ और डर दोनों पढ़ लेती थी। मुझे उस आदमी पर शक है, जीवन ने आगे कहा, मैंने एक बार उसका पीछा भी किया था। विक्रांत ने धीरे से पूछा, और पीछा करके क्या मिला? जीवन ने सिर हिलाया, कुछ खास नहीं, ना कोई मीटिंग ना कोई कॉल, मगर उसका यूं फोन बंद रहना मुझे खतरे की घंटी जैसा लग रहा है। ये बात कहते हुए जीवन की आवाज़ में हल्का कंपन था। विक्रांत ने कुर्सी से उठते हुए कहा, सिर्फ फोन बंद होना खतरा नहीं होता जीवन, खतरा तब होता है जब आदमी जरूरत से ज्यादा चुप हो जाए। फिर भी, वो एक पल रुका। विक्रांत ने अपना फोन निकाला और खुद जमाल को कॉल लगाया। एक रिंग, दो रिंग, फिर वही आवाज, जिस नंबर पर आप संपर्क कर रहे हैं। विक्रांत ने फोन नीचे रखा। अब उसके चेहरे की सख्ती में हल्की सी दरार आ चुकी थी। ये अच्छा संकेत नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। जीवन ने तुरंत पूछा, आपको भी वही लग रहा है जो मुझे? विक्रांत ने जवाब देने से पहले कमरे का एक चक्कर लगाया। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गई। जीवन ने घबरा कर कहा, कहीं उसने आर्यन से संपर्क तो नहीं किया? विक्रांत की आंखें एक पल के लिए तेज हो गईं। अगर ऐसा होता, वो बोला, तो अब तक कोई हलचल दिख जाती। फिर उसने सीधा सवाल किया, तुमने जब उसका पीछा किया था किसी और की मौजूदगी महसूस की? जीवन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, नहीं, मगर एक बात थी, वो बार बार पीछे देख रहा था जैसे उसे लग रहा हो कोई और भी है। ये सुनते ही विक्रांत की सांस जरा भारी हो गई। मतलब? वो खुद से जैसे बोला, खेल में कोई तीसरा भी उतर चुका है। गोदाम में सन्नाटा और गहरा हो गया। देखो जीवन, विक्रांत ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, फोन बंद होना अपने आप में खतरा नहीं है, मगर जिस आदमी का फोन बंद हो और जो आदमी हमारे बहुत करीब हो वो खतरा बन सकता है। जीवन ने धीरे से पूछा, तो अब? विक्रांत ने फोन जेब में रखा, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। जमाल खुद सामने नहीं आएगा तो उसे सामने लाना पड़ेगा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई जिसका मतलब सिर्फ एक था, कुछ बड़ा होने वाला था। जैसिका हमेशा से ऐसी ही थी, पार्टियां, किटी पार्टी, शॉपिंग, घूमना फिरना, उसकी पूरी पहचान ही उसकी सोशल लाइफ थी। लोग उसे जानते थे, पहचानते थे, बुलाते थे। विक्रांत से शादी के बाद भी उसका वही रंग ढंग रहा, मगर सिर्फ कुछ ही समय तक। अब जैसिका कहीं अकेले नहीं जा सकती थी, अगर बाहर जाना था तो सिर्फ विक्रांत के साथ, उसके बिना एक कदम भी नहीं। घर अब घर नहीं रहा था, एक खूबसूरत कैद बन चुका था। उसी दौरान उसकी पुरानी किटी पार्टी ग्रुप से फोन आया था। आज जाते जाते ठंडे लहजे में बस इतना कहा था, याद रखना जैसिका, अगर तुमसे कोई भी गलती हुई तो तुम्हें पता है। वो शब्द आज भी जेसिका के कानों में गूंज रहे थे। अब फोन फिर से बज रहा था। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सादिया। जेसिका का बिल्कुल मन नहीं था फोन उठाने का। उसे पता था एक छोटी सी बात, एक ज्यादा सवाल सब कुछ बिगाड़ सकता है। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने फोन को कुछ सेकंड तक बस देखा। रिंग रिंग। आखिरकार उसने गहरी फांस ली और कॉल उठा ली। हेलो। उसकी आवाज सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी मगर अंदर से टूटी हुई थी। अरे जेसिका, कहाँ गायब हो गई हो? सादिया की आवाज हमेशा की तरह बेफिक्र थी। किटी पार्टी में नहीं आई, जैसे कोई सुन रहा हो। हाँ बस थोड़ा बिजी रहती हूँ आजकल, उसने झूठ को सच की तरह भरोसा। फोन के उस पार हंसी थी, इधर उसकी घुटन। चलो इस संडे आ जाओ ना, सादिया ने कहा। विक्रांत भी तो बिजी रहते होंगे, तुम्हें भी तो थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। जेसिका के हाथ ठंडे पड़ गए। मैं पूछकर बताऊंगी, उसने जल्दी से कहा। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आईं। कभी जो दुनिया उसकी मुट्ठी में थी, आज उसी दुनिया से बात करना भी उसे डराने लगा था। और उसे एहसास हो रहा था ये सिर्फ बंदिश नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। अगर जेसिका ने एक भी कदम गलत रखा तो इसकी कीमत सिर्फ वही नहीं चुकाएगी। क्या हुआ? रेहाना बेगम ने सादिया को फोन रखते देख पूछा। कौन नहीं आ रहा तुम्हारी किटी पार्टी में? सादिया ने हल्का सा मुंह बनाया। वो क्या है ना ताई अम्मी, उसने कहा, हमारे ग्रुप में एक लड़की है, जेसिका कपूरिया। वो कल वाली मीटिंग में भी नहीं आई थी। रेहाना बेगम ने भौहें से कोड़ ली। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ताई अम्मी, बात यह है कि संडे को हमारी होटल में किटी पार्टी है, मैं उसी के लिए उसे याद दिला रही थी, सादिया ने बात आगे बढ़ाई। और सुनकर आपको अजीब लगेगा, उसने कहा, हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी। रेहाना बेगम एक पल के लिए चुप हो गई, फिर होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर आंखों में सवाल थे। पहले तो ऐसा कभी नहीं किया उसने, सादिया ने कहा। पहले तो बिना पूछे आ जाया करती थी, पार्टियों की जान होती थी वो, सादिया ने सिर हिलाया। रेहाना बेगम ने कुर्सी से पीठ टिकाई और बड़े ठहराव से बोली, अब हर कोई मेरे बेटे रेहान जैसा तो नहीं होता ना? उनकी आवाज में साफ गर्व था। तुम कितनी खुशकिस्मत हो सादिया, उन्होंने आगे कहा, कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हुई। मैंने उसे कभी नहीं सिखाया कि बीवी को रोको टोको, किसी बात के लिए मना करना हमारे घर की रिवायत नहीं है। सादिया हल्का सा मुस्कुरा दी। क्या जेसिका इंद्र को बता देगी कि विक्रांत ही है जिसने जगत का एक्सीडेंट करवाया था? आर्यन जिसके पास सबूत पहुंच चुके हैं मगर अब तक चुप क्यों है? प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।